أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. آج انشاءاللہ الحمدللہ کے بعد سورہ الفاتحہ کو کنٹینیو کریں گے. اور الحمدللہ جب ہم کہتے ہیں اور اس کی افادیت اور اس کے فوائد اور اس کی فضیلت ہم لوگ تفصیل میں پڑھ چکے ہیں. الحمدللہ کہتے ہی ہم رب کہتے ہیں. اللہ تو اللہ کا ذاتی نام ہے. اللہ اللہ ہے. اور اس کی ایک تفصیل میں آپ کو انشاءاللہ آج ہی بھیجوں گی کہ اللہ کا لفظ جو ہے اس کا کیا مطلب ہے, اور وہ بھی ہم اس کے صرف ممکنہ معنی جان سکتے ہیں. ہم اس کے بارے میں, ایک تو بہتر ہے کہ ہم قیاس نہ کریں, اس کے بارے میں ہم غور و فکر کر سکتے ہیں, اس کی تاریخ پہ ہم تحقیق کر سکتے ہیں, لیکن عربی زبان میں اللہ کا ایگزیکٹ معنی نہیں موجود. اور اس کی تفصیل انشاءاللہ میں آپ کو اس کے ساتھ آنے والی آڈیو میں بتاؤں گی. الحمدللہ کہتے ہی ہم اللہ کا ایک اور نام لیتے ہیں, اور وہ ہے رب. رب کا کیا مطلب ہے؟ اور اسی لیے میں نے آپ کو وہ چھوٹی سی ایک ویڈیو کلپ بھیجی تھی جس میں استاد نعمان علی خان ایکسپلین کر رہے ہیں کہ رب کا کیا مطلب ہے. اس میں جتنے حصے انہوں نے بتائے ہیں, مجھے امید ہے کہ آپ نے وہ دیکھ لیے ہوں گے, اور وہاں پہ عربی میں لکھا ہوا ہے, تو اگر کسی کو بہت زیادہ انگریزی سمجھ نہیں بھی آتی تو وہ جس طرح سمجھا رہے ہیں اس سے بات کافی کلیئر ہو جاتی ہے. پانچ چھ مختلف طریقوں سے انہوں نے یہ جو روٹ ہے, یہ ثلاثی مجرد جو عربی کا ہے, را با با, یعنی را زبر اور پھر با, اگر آپ غور کریں تو اس کے اوپر شد ہے. شد عربی میں کسی چیز کا زور بتانے کے لیے, شدت بتانے کے لیے, شد کا مطلب بھی یہی ہے نا, شدت, شدید ہو جانا, زیادہ ہو جانا, سخت. یعنی کہ سخت تو بہت ایک ایسا لفظ ہے جو اسے نہیں ڈسکرائب کر سکتا, لیکن کسی چیز کو جب آپ زور دینا چاہتے ہیں تو آپ اس پہ اس کو شدت اس کی محسوس کرتے ہیں, یا آپ بولتے ہوئے اس پہ شد لگاتے ہیں. تو اسی طرح رب کا جو مادہ ہے, اس میں سے جتنے الفاظ نکلے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات بیان کرتے ہیں. رب وہ ذات ہے سب سے پہلے تو جس نے تخلیق کیا, اس نے بنایا, ٹھیک ہے جی, مطلب وہ خالق ہے. اچھا, اس نے کہاں سے بنایا ہمیں نہیں پتا. ہمیں اتنا پتا ہے, جیسے آپ اپنے آپ کو ہی لے لیں, ہم گوشت پوست کے, ہڈیوں کے, خون کے بنے ہوئے انسان ہیں. وہ گوشت پوست اور خون جو ہے وہ خلیوں کا بنا ہوا ہے, یہ بھی ہمیں پتا ہے. جتنے لوگ سن رہے ہیں آئی ایم شیور ان کو پتا ہوگا, لیونگ سیلز ہیں, خلیے ہیں, ہم ان کے بنے ہوئے ہیں. یہ خلیے جو ہیں یہ مختلف قسم کے کیمیائی مادوں سے بنے ہوئے ہیں. کوئی جھلیاں بنا رہا ہے, کوئی ان کے اندر کے جو چھوٹے چھوٹے حصے ہیں جو اس کا سارا کام کرتے ہیں, کوئی ایسے حصے ہیں جو آکسیجن اندر لے کے جاتے ہیں, کوئی اس خلیے کے ایسے حصے ہیں جو اس کا جو فاسد مادہ ہے, جو اس کے اندر ویسٹ میٹر تیار ہوتا ہے, وہ اس کو لے کے باہر جاتے ہیں. کوئی ایسے حصے ہیں اس کے جو اس کو حرکت کرنے میں مدد کرتے ہیں, کوئی اس کے ایسے حصے ہیں جو اس کی پروپیگیشن میں, اس کی تولید میں, اس کی ملٹیپلیکیشن, یعنی اس ایک خلیے میں سے دو خلیے بنانے میں مدد کرتے ہیں. تو بے شمار حصے ہیں اس خلیے کے جو ہمیں معلوم ہیں. سائنس نے ہمیں اتنی ایبلٹی دی ہے, اللہ نے جو ہمیں دماغ اور آنکھیں دی ہیں اس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ ہمیں خلیے کے اندر کے بہت سارے اسرار معلوم ہیں. اب وہ خلیاں جو ہے وہ پروٹین کا بنا ہوا ہے, کاربوہائیڈریٹ کا, یعنی حیاتیات کا, جو اس کے علاوہ جو ہیں تو چینی کا مادہ ہے جس کو شوگر کہتے ہیں یا کاربوہائیڈریٹس کہتے ہیں, پھر فیٹس ہیں, چربی ہے, اس میں سے بنا ہوا ہے وہ, یہ بھی ہمیں معلوم ہے. फिर आगे मसलन आप हयातियात को ले लें, जो इसके प्रोटीन का जो इसका हिस्सा है वो मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है, ठीक है ना जी, मॉलिक्यूलर है वो, यानी कि वो छोटे, इतने छोटे हैं कि वो माइक्रोस्कोप में भी नहीं नज़र आते उसके हिस्से। और फिर वो आगे कीमियाई मादे जो हैं, कुछ कार्बन है, कुछ नाइट्रोजन है, कुछ ऑक्सीजन है, कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, और उनसे मिल के ये प्रोटीन बना हुआ है, इन्हीं से मिल के फैट बना हुआ है। तो यानी कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये इसके बहुत ही बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। फिर वो कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन कहाँ से आए हैं? वो जो लोग अल्लाह को नहीं मानते वो ये कहते हैं कि जी ये तो फ़ज़ा में पाए जाते हैं, ये तो बस खुद ब खुद मिल के ये बन गए, ये कुछ भी बना सकते हैं। हैं जी, फ़ज़ा में जो कार्बन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पाई जाती है हवा में, वो आपस में मिल के मुख्तलिफ़ कॉम्बिनेशन से मुख्तलिफ़ मॉलिक्यूल्स बना सकती है। आप यकीन माने, इस पे भी रिसर्च हो चुकी है कि अगर हम एक डब्बे में कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन और पानी के मॉलिक्यूल्स डाल दें तो कितना चांस है कि वो मिल के प्रोटीन का एक मॉलिक्यूल बना देंगे। और वो चांस, यानी मुझे वो हिसाब की या वो मैथमेटिक्स की मुझे वो टर्म नहीं आती, यानी वो मिलियंस एंड बिलियंस में से एक चांस है कि ये सारे मॉलिक्यूल मिलके प्रोटीन का एक ऐसा मॉलिक्यूल बना देंगे जो खलियों में पाया जाता है, जो जो जिंदा चीज़ों में पाया जाता है। तो इतना छोटा चांस है कि ये एक रैंडम इवेंट है या ये एक हादसाती अमर है कि ये चीज़ें मिलके ऐसी कोई चीज़ बना दें। दूसरा सवाल जो है वो ये है कि अच्छा जी, कार्बन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से तो मिलके हम बन गए, लेकिन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन कहाँ से आए? और इसका जवाब किसी के पास नहीं है, इसका जवाब है ही नहीं, ना साइंस में है, ना फलसफे में है, ना आपकी केमिस्ट्री आपको बता सकती है, ना बायोलॉजी ये समझा सकती है कि ये आखिर आए कहाँ से। तो हमारे अल्लाह की, हमारे रब की जो वसफ है, जो जो खूबी है, वो हमें मालूम है कि वो बदी है या बदी, ये नाम आता है कुरान में। और बदा का मतलब है एक चीज़ को ऐसे तरीके से बनाना कि उसके अज्ज़ा मालूम ना हो, यानी एक चीज़ को बना तो देना लेकिन उसको देख के आप ये नहीं बता सकते कि ये अज्ज़ा कहाँ से आए हैं या वो अज्ज़ा हैं क्या। तो हमारा रब जो है वो वहाँ से तख्लीक की इब्तिदा करता है जहाँ से हम सोच भी नहीं सकते, हमारा इदराक वहाँ तक नहीं पहुँच सकता, हम थ्योरी भी नहीं बना सकते कि ये एटम्स कहाँ से आ गए, ये कैसे बन गए, ठीक है जी। तो वहाँ से तख्लीक की इब्तिदा करने वाला, जहाँ से हम सोच भी नहीं सकते, और वहाँ से फिर एक पूरा जो मैंने आपको प्रोसेस बताया एक इंसान का, आप अपनी ज़ात को देख लें, क्योंकि हम और आप ये सुन रहे हैं तो बहुत आसान है कि बजाय पहाड़ों पे और जुग्राफिये पे और हम फ़िज़ा पे गौर करने के, आप अपने आप को देख लें। ये जो आपका जो ऑर्गेनिज्म है, आपकी जो ज़ात है, ये उस रब ने बनाई है जिसके बारे में, तो हम उसके बारे में क्या सोचेंगे, हम तो उन अज्ज़ा के बारे में भी नहीं सोच सकते जहाँ से वो इसको मार्ज़े वजूद में ले आया। और फिर उसने ना सिर्फ उसको बना दिया, उसने उसकी परवरिश की है जी। वो चीज़ जब बन गई है, वो एक सेल बन गया, तो उस सेल को फिर मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस में जोड़ा है अल्लाह ने, किसी, वो एक ही सेल था, एक ही खलिया था, किसी उसी खलिये में से जो खलिये पैदा हो रहे हैं, किसी से जिल्द बन रही है, किसी से नाखून बन रहे हैं, किसी से दांत बन रहे हैं, किसी से आंखें बन रही हैं, किसी के दिमाग बन रहे हैं जी, किसी में से नाक बन रही है, उसी उसी खलिये में से हाथ बन रहे हैं, पैर बन रहे हैं, ये कैसे हो गया? तो ना सिर्फ उसने उसको, उस जिंदा चीज़ को पैदा किया, उसने उसे डिफ्रेंशिएट किया, उसको उसका काम दिया, उसको उसकी जिम्मेदारी दी, और फिर उसको ना सिर्फ डिफ्रेंशिएट किया, छोटे बेबी की आपने आंखें देखी होंगी, उसके हाथ देखे होंगे, सब कुछ देखा, छोटे छोटे हाथ होते हैं, छोटे छोटे पैर होते हैं उसके, छोटे कच्चे कच्चे बाल होते हैं उसके सिर पे, 1 साल बाद देखिए वो सब कुछ बदल चुका होता है, वो अपने हाथों से चीजें उठा के खा रहा होता है। माँ चीखती है, अरे हर एक चीज मुंह में डाल लेता है, ना ना करो, मना करो इसे, है फंदा लग जाएगा, गले में फंस जाएगा कुछ। फिर वो उन्हीं पैरों से, छोटे छोटे जो उसके पैर होते हैं, जो आप उसको उठाएं तो वो हवा में लटकते हैं ऐसे गोश्त के लोथड़ों की तरह, वो उन पैरों पे चलना शुरू कर देता है। तो ना सिर्फ वो उसे डिफ्रेंशिएट कर रहा है वो रब, वो उसको स्पेशलाइज कर रहा है, वो उसको डेवलप कर रहा है। और ये सब प्रोसेस हमारी आंखों के सामने होता है, बीसियों बार एक दिन में हम इस प्रोसेस को देखते हैं। मजाल है जो हम कभी सोचें कि ये कहां से, ये क्या हो रहा है, कहां से हो रहा है। ये करना है अल्हम्दुलिल्लाह कहने के बाद, ये सोचना है आखिर वो जो अल्लाह है, वो जो रब है, उसका शुक्र जिसका हम अदा कर रहे हैं वो है क्या, उसके जो काम हमें अपने इर्द गिर्द नजर आ रहे हैं, उसकी रुबूबियत, उसकी रब्बानियत। मुरब्बी, ये लफ्ज़ नुमान अली खान ने बताया था कि वो परवरिश करता है, वो डेवलप करता है, वो नरिश करता है, वो हमें नर्चर करता है, वो हमें पाल पोस के बड़ा करता है और यहाँ तक पहुँचाता है कि आज मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं, या आप बोलेंगे और मैं सुनूंगी, हम सोच रहे हैं, हमें पुरानी बातें याद आ रही हैं, हम लिख रहे हैं। ये इसी पे अगर आप शुरू हो जाएं, अल्लाह ताला की रुबूबियत पे, और इसी रब में से एक लफ्ज़ निकला है उर्दू का, तरबियत। तो वो जात जिसने नेस्त से, यानी कुछ भी नहीं था, और वहां से तख्लीक करके हमें बना दिया, और सिर्फ हमें बना नहीं दिया, वो हमारी तरबियत करता है, वो हमें किसी काबिल बनाता है, किसी जगह तक पहुंचाता है, हमसे उसने अपना काम लेना है, वो हमें स्पेशलाइज कर रहा है। हर गुजरते हुए लम्हे के साथ जो हमारी समझ में, हमारी सोच में, हमारी विजन में इजाफा हो रहा है, हमारी सोचों में तब्दीली आ रही है, ये सब कहाँ से आ रही है? इसको तो अगर आप लिखने बैठ जाएं तो मेरे ख्याल में कल शाम हो जाएगी, लेकिन वो ख़त्म नहीं होगा। कुरान में यही है ना, अगर सारे समंदर स्याही बन जाएं और उससे तुम अपने रब की सिफात को लिखोगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे, चाहे वो दोबारा से भी स्याही बन जाए। सुभान अल्लाह, यानी ये लिटरली ये बात सच है, ये कोई ऐसा दावा नहीं है कि कोई ये कहे कि वो इतना बड़ा है, बस वो इतना बड़ा है, नहीं, ये दावा हकीकत में भी सच है कि उसकी सिफात का हम अहाता नहीं कर सकते। यही जो मैं आपको अल्लाह का छोटा शॉर्ट सेशन भेजूंगी, और तौहीद का इंशाल्लाह उसूल की मद में मैं आपको भेजूंगी, वहाँ ज़्यादा आपको क्लियर होगा कि ये रब की जो खसूसियत है और रब की जो सिफत है। और याद रखें, रब अल्लाह का वो नाम है जो उसने प्रेफरेंस से इस्तेमाल किया है। अक्सर दुआएं, आप हम दुआ मांगते हैं ना, रब्बना आतिना फिद अल्लाहुम्मा भी दुआओं में हम कहते हैं, लेकिन अल्लाह हम कमतर दुआओं में कहते हैं, हम ज़्यादा दुआओं में रब्बना कह रहे होते हैं, रब्बी कह रहे होते हैं, ऐ मेरे रब, ऐ हमारे रब। क्यों? क्योंकि इसका मतलब है ऐ हमारे परवरदिगार, ऐ हमारे पालनहार, ऐ हमें किनारे लगाने वाले, ऐ हमारे लिए जिम्मेदार, जिसने हमारा जिम्मा उठाया हुआ है, जिसने बिल्कुल एक खला में से हमें तख्लीक करके, और इसे आगे सोचना है, और वो सोच चुका है, हमें सोचना है, उसने यहां तक पहुंचा के हमें आखिर उम्र तक पहुंचाना है, फिर वहां पे उसने वो रूह निकाल लेनी है जो उसका अमर है, जिसकी वजह से हम हैं, हम जिंदा हैं, वो रूह वो निकाल लेगा, वो रूह मिल जाएगी उससे, वो उसको वापस चली जाएगी। और फिर उसके बाद भी उसने इंतज़ाम किया हुआ है कि हम यहाँ पे जो कुछ कर रहे हैं उसका उसने पूछना है, उसकी उसने पूछ करनी है, उसका उसने हिसाब किताब करना है हमारे साथ। ये हम सिर्फ नहीं कह रहे, ये हम कुरान पढ़ाते हुए नहीं कह रहे, आप दुनिया में कहीं देख लें अकाउंटेबिलिटी का लफ्ज़। और उसके बाद लाइफ आफ्टर डेथ पे कितनी रिसर्च हुई है, काफिरों ने कितनी रिसर्च की है, उसके बाद कर्मा का जो एक कानून है, जो बुद्धिज्म में और हर आप देखें योगिक डिसिप्लिन्स में, कर्मा क्या है, आपके पास वापस वही आता है जो आप कर रहे होते हैं। इसका क्या मतलब है? है कोई हिसाब लेने वाला ना? किसी ने सोच के रखा हुआ है, किसी ने सिस्टम बनाया हुआ है, मुंह से निकली हुई बात वापस नहीं आती, हाँ उसके असरात वापस आ जाते हैं। हत्ता के दिमाग में जो सोच भी गुजरती है ना, उसके असरात भी पैदा होते हैं। तो ये जो सिस्टम है, इसको बनाने वाला वो कोई मामूली ज़ात नहीं हो सकती। उस ज़ात की सिफात हम उसका अहाता भी नहीं कर सकते। चाहे जाए कि मैं इस मुख्तसर से सेशन में आपको समझा दूं कि वो क्या सिफात हैं, मुझे तो खुद भी मतलब कि मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस करा सकती हूँ, और वो भी मैंने आपको बड़ा एक मुख्तसर तरीके से अपनी ज़ात में गौर करने की दावत दी है कि आप देखें आप कहाँ से आए हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, और उसके बाद का भी उसने इंतज़ाम किया हुआ है एक अबदी ज़िंदगी का, जहाँ पे ना ज़िंदगी है और ना मौत है, बल्कि एक इटर्निटी है, उसका भी उसने इंतज़ाम किया हुआ है। और वहाँ पे हमने दाखिल होना है, वहाँ पे हमने सारा हिसाब देना है। ये वो रब है। जब हम नमाज में पढ़ते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह रब, तो थोड़ी देर एक लम्हा सोचा करें कि ये किस ज़ात का नाम लिया है आपने। हज़रत अली करमल्ला वजह रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के बारे में ये रिवायत है कि जब अज़ान होती थी तो आपके जिस्म पे लर्ज़ा तारी हो जाता था, और आपसे जब लोग पूछते थे कि क्या हुआ, तो आप कहते थे तुम्हें पता है ये कौन सी ज़ात बुला रही है। यानी कि क्योंकि उनके तो बहुत बड़े मर्तबे थे, वो तो बहुत तकवा में आगे बढ़े हुए लोग थे, तो वो कनेक्शन जो उनके पास था, और वो जब उस कनेक्शन से सोचते थे और उस अक़ल से और उस इदराक से इस ज़ात के बारे में इमेजिन करते थे, तो हैबत और जलाल की जो फीलिंग उनके ऊपर तारी होती थी, वो एक कुदरती अमर है कि ये वो रब है जो कहाँ से आपको लाया है और कहाँ ले के जा रहा है। और सिर्फ आप नहीं, आगे जो आने वाला लफ्ज़ है उसमें अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि ये बात किसकी हो रही है, वो किस चीज़ का रब है। तो मैंने अभी आपको सिर्फ अपनी ज़ात बताई है, यहाँ से मैंने शुरू किया है कि रब है वो है रब्बिल आलमीन। आलमीन का तर्जुमा इंशाल्लाह अगले लेसन में शेयर किया जाएगा, लेकिन आलमीन का जो लफ्ज़ है और जिस कदर ये आलमगीर है और ये कामिल लफ्ज़ है, यानी इससे बेहतर लफ्ज़ ज़ाहिर है, अल्लाह ताला ने हर लफ्ज़ बल्कि हर हर्फ जो इस कुरान का है वो बेमौका बेमहल और वो वैसे ही नहीं कहा गया। उसके अंदर जो मानी है और उसका जो अपने से पहले और बाद में आने वाले अल्फाज के साथ रब्त है, यही समझना, इतना ही अगर हम समझ लें तो कुरान से हमें जो फ़ायदा पहुंच सकता है और कुरान जैसे हमारी ज़िंदगी बदल सकता है, हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। हम तो अभी सिर्फ इसलिए बैठे हुए हैं कि हम कुरान को अपनी तरजीह कैसे बनाएं। आपने कभी सोचा है कि ये जो हमारा अल्लाह है, ये जो हमारा रब है, उसने कैसे कैसी जगहों पे और कहाँ कहाँ पे उसने हमें तरजीह दी है, उसने हमें अपनी प्रायोरिटी रखा है बहुत सी दूसरी मखलूकात के मुकाबले में, बहुत से दूसरे इम्कानात के मुकाबले में उस रब ने हम लोगों को अपनी तरजीह रखा है। ये भी तो हो सकता था कि हमारे खलिये बिल्कुल, बहुत थोड़ा फ़र्क है हमारे खलियों में, इतना छोटा कि हम समझ भी नहीं सकते हमारे और बंदर के खलियों में जो फ़र्क है, हमारे और बंदर के डीएनए में जो फ़र्क है। क्या आप सोच सकते हैं? हम बंदर भी तो पैदा हो सकते थे, लेकिन हमारे रब ने इस बात को अहमियत दी और इस बात को तरजीह रखा कि ये जो मेरा बंदा है, ये जो मैं बना रहा हूँ, ये जो इसके अंदर डीएनए जाने वाला है, इसमें से एक ऐसा इंसान पैदा होगा, ये बंदर नहीं होगा, ये बनमानस नहीं होगा, ये कुत्ता नहीं होगा, ये बिल्ली नहीं होगा, ये बंदा होगा या ये बंदी होगी, ये कोई मामूली बात है। तो रब बोलते हुए आप अपने रब के बारे में सिर्फ इतना ही सोच लें कि किस किस मरहले में उसने आपको अपनी तरजीह रखा है। वो रब जिसका छोटे से लेके बड़े हुक्म तक हम लोग बड़ी आसानी से अपनी तरजीहात पर, अपनी प्रायोरिटीज पर कुर्बान कर देते हैं। बस एक वो हमसे कब प्यार है, हाँ नींद तुम्हें प्यारी है, इतनी सी बात है जी, चंद मसल्स हिलाने की बात है, आंखें खोलने की बात है, गरम बिस्तर छोड़ने की बात है, हम तो इतना भी नहीं कर सकते। तो रब बोलते हुए जरूर सोचा करें कि हम जिस रब की तरजीह हैं, उस रब के अमर को और उस रब के कलाम को हम कहाँ और कैसे तरजीह बनाएं। अल्लाह हम सबको कुरान समझ के उस पे अमल करने वाला और उसको आगे पहुंचाने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन।